हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 64 ऋषभ अपनी बिल्डिंग की ओर पैदल बढ़ रहा था, तभी उसे अपने नाम की आवाज़ सुनाई दी। ऋषभ, ऋषभ, रुको! ये आवाज़ अनजान थी। ऋषभ को लगा नहीं कि कोई उसे बुला रहा है, इसलिए वो चलता रहा। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हे, तुम ऋषभ हो ना? हम तानिया की पार्टी में मिले थे। मैं टीना हूँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड। ऋषभ ने लड़की को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, कौन तानिया, कौन टीना, मुझे कुछ याद नहीं। मैं कब किसकी पार्टी में जाता हूँ इतना हिसाब नहीं रखता। लड़की ने फिर ज्यादा ही दोस्ताना अंदाज में कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हें याद नहीं? सीरियसली, हमने तो बात भी की थी और मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम ऋषभ ही हो ना? ऋषभ ने बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू मुझे बार बार मेरा नाम याद दिलाने के लिए, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारा नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा। टीना, मीना, जो भी हो, इस तरह रास्ते में मेरे पीछे क्यों पड़ रही हो तुम? लड़की ने आंखें घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी इस तरह सड़क पर मिलने की उम्मीद नहीं थी। उस दिन तो मर्सिडीज से आए थे तुम, वो क्या किसी और की थी? ऋषभ ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा, तो ये पूछने आई हो? वैसे भी वो कार मेरी हो या किसी और की, मैं वो तुम्हें तो गिफ्ट करने वाला नहीं ना? लड़की ने भी उल्टा जवाब दिया, मुझे क्या गिफ्ट करोगे, पहले अपने लिए ही एक ले लो। इस तरह पैदल चल रहे हो, कम से कम टैक्सी तो कर लो। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने गरीब होगे। ऋषभ ने कहा, अरे मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पैसे मांगने नहीं आया, इसलिए प्लीज़ यहाँ से चलती बनो, मुझे इस तरह इरिटेट मत करो। लड़की ने मुंह बनाकर कहा, हाउ रूड, समझते क्या हो अपने आप को, तुम्हें लड़कियों से बात करने की ज़रा भी तमीज़ नहीं है। ऋषभ ने फिर खरी खोटी सुनाते हुए बोला, और तुम बहुत लड़कियों की तरह बात कर रही हो, इस तरह कौन सी लड़की किसी लड़के के पीछे पीछे भागती है? ये सुनकर लड़की को बुरा लगा, वो वहीं रुक गई और गुस्से से ऋषभ को घूरने लगी, लेकिन ऋषभ आगे बढ़ गया, लड़की पीछे मुड़कर चली गई। लड़की के जाने के बाद ऋषभ थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन उसके पैर आगे नहीं बढ़े, वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन उसे लगा जैसे वो पूरी तरह जमीन से नहीं टकराया, बीच में ही किसी ने उसे पकड़ लिया। अब ऋषभ को अपना सिर किसी की गोद में महसूस हो रहा था। उसकी पलकें भारी थीं, वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो फिर बेहोश हो गया। हे, क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो ऋषभ, समवन हेल्प, कोई है यहाँ पर? जिस लड़के ने उसे गिरने से बचाया था, वो उसके चेहरे पर हल्के हाथ से थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। ऋषभ पूरी तरह बेहोश था। उस लड़के ने उसके चेहरे को छुआ तो उसे पता चला कि ऋषभ की बॉडी बहुत चल रही है और उसे तेज बुखार है। ये लड़का कोई और नहीं, समर था। उसका कोचिंग सेंटर उसी रास्ते से आगे था, वो अक्सर यहाँ से पैदल जाता था, इसलिए उसने ऋषभ को उस दिन भी देखा था और आज भी वो अपने कोचिंग सेंटर जा रहा था। तभी उसने ऋषभ को गिरते हुए देखा और उसकी मदद के लिए गया। समर ने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। समर ने बेहोश ऋषभ को अपनी गोद में उठाया और उसी बिल्डिंग की ओर बढ़ा जहाँ से ऋषभ उस दिन निकला था। समर जैसे ही ऋषभ को लेकर गेट के पास पहुंचा, गेट कीपर ने बेहोश ऋषभ को पहचान लिया और समर से पूछने लगा, क्या हुआ है हमारे साहब को, ये क्या किया तुमने और ये इस तरह बेहोश क्यों है? गेट कीपर के इल्ज़ाम सुनकर समर घबरा गया, अरे मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैं तो बस इनकी मदद कर रहा था, वो सड़क पर बेहोश पड़े थे और कोई मदद के लिए नहीं आया, तो मैंने, तुम डॉक्टर को फ़ोन करो या फिर इनके घर पर किसी को बुलाओ। गेट कीपर के पास भी ऋषभ को उस हालत में देखकर समर पर इल्ज़ाम लगाने का वक्त नहीं था, उसने समर की मदद की और ऋषभ को बिल्डिंग के अंदर एक लाउंज एरिया में ले गया, वहाँ उन्होंने ऋषभ को लिटा दिया। बेहोश होने के बाद भी ऋषभ ने समर का हाथ पकड़ा हुआ था, समर ने भी हाथ नहीं छोड़ाया और उसके पास खड़ा हो गया। फिर उसने एक सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इनके किसी जानने वाले को कॉल करके बुलाइए या फिर डॉक्टर को। ठीक उसी वक्त दिव्या अपनी एक कलीग पूजा के साथ लिफ्ट से बाहर आ रही थी, उसने भीड़ देखी और वहाँ जाकर देखा तो सोफे पर बेहोश ऋषभ को देखकर थोड़ी ओवर एक्टिंग करते हुए चिल्लाई, ऋषभ, ओ माय गॉड ऋषभ, तुम्हें क्या हो गया? इसे क्या हुआ है? ये इस तरह बेहोश क्यों है और यहाँ पर? दिव्या की बातें सुनकर समर, वॉचमैन, गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड, जितने भी लोग थे, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दिव्या तो इस तरह चिल्ला रही थी जैसे वो ऋषभ की वाइफ या गर्लफ्रेंड हो। समर ने आराम से दिव्या को समझाते हुए कहा, आप कौन हैं और प्लीज इस तरह मत चिल्लाइए, वो बेहोश है, मुझे भी नहीं पता इसे क्या हुआ है, और अगर आप भी नहीं जानती हैं और इनकी इतनी फिक्र है तो प्लीज डॉक्टर को कॉल करिए जल्दी से। बेहोश ऋषभ की तरफ देखते हुए पूजा ने दिव्या के कान में धीरे से कहा, ये ऋषभ सर को क्या हुआ? पिछले एक हफ्ते से ऑफिस आ रहे हैं, शायद काम के स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गए होंगे, इन्हें आदत तो नहीं है। पूजा की बात सुनकर दिव्या ने उसे आंखें दिखाईं, पूजा चुप हो गई। दिव्या ने अपना मोबाइल निकालकर डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने कहा कि वो अभी नहीं आ पाएंगे। दिव्या ने सीधा एम्बुलेंस बुला ली। कुछ ही मिनट में एम्बुलेंस आ गई। समर, दिव्या और एम्बुलेंस वाले ऋषभ को एम्बुलेंस में ले गए। जाते हुए दिव्या ने जतिन को इस बारे में बता दिया। जतिन को लगा कि उनकी बॉस का भाई बेहोश हो गया है, उसने सबसे पहले शिविका को कॉल किया। करण सारी फाइल्स और लैपटॉप लेकर नीचे वाले गेस्ट रूम में आया था। शिविका उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने काम शुरू भी नहीं किया था कि तभी शिविका का मोबाइल फोन बजा। करण रुक गया। शिविका ने जतिन का नंबर देखकर कॉल रिसीव कर ली। शिविका ने मोबाइल कान से लगाते हुए पूछा, हाँ जतिन, क्या हुआ बोलो। करण ने उसकी तरफ देखा। जतिन ने क्या बोला ये करण को सुनाई नहीं दिया, लेकिन शिविका के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे थे। उसके माथे पर बल पड़ गए और आईब्रो भी सिकुड़ गई थी। साफ पता चल रहा था कि वो कोई ऐसी बात सुन रही है जिससे उसे टेंशन हो रही है। पूरी बात सुनने के बाद उसी तरह के एक्सप्रेशन के साथ शिविका ने फ़ोन पर ऑर्डर देते हुए कहा, जतिन सुनो, तुम जो भी काम कर रहे हो वो छोड़ो और तुरंत हॉस्पिटल जाओ, साथ ही मुझे हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस मैसेज करो। इतना बोलकर शिविका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन वो अभी भी परेशान लग रही थी। उसने एक हाथ अपने चेहरे पर रखकर कहा, वो कह रहा था कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी, सब मेरी गलती है, सच में सब। करण ये सब देख रहा था, लेकिन कॉल के बीच में उसने बोलना ठीक नहीं समझा। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही उसने शिविका को ये सब बोलते हुए सुना। उसने शिविका का हाथ पकड़कर उसके चेहरे से हटाया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अरे लेकिन क्या हुआ, क्या गलती है तुम्हारी और किसकी तबीयत ठीक नहीं है? एक मिनट काव्या, वो तो ठीक है ना, और किसका फोन कॉल था? काव्या का नाम लेते ही करण थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत करके ये सवाल पूछा। शिविका ने पहले धीरे से नहीं में सिर हिलाया और फिर धीमी आवाज में कहा, ऑफिस से फ़ोन था, वो ऋषभ, उसे पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, वो सुबह बोल रहा था कि शायद उसे फीवर है, लेकिन मैंने नहीं सुनी उसकी बात, कहा कि ड्रिंक करने की वजह से उसे हैंगओवर हुआ होगा, लेकिन अभी वो बेहोश हो गया है और सब उसे हॉस्पिटल ले गए हैं, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं जा सकती पैर की वजह से। ये बात बोलते हुए शिविका इमोशनल हो गई। ऋषभ के बेहोश होने का गिल्ट वो खुद पर ले रही थी, और इससे ज्यादा गिल्ट उसे इस बात का था कि वो अपने पैर में चोट की वजह से तुरंत अपने भाई को देखने नहीं जा सकती। करण ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ तुम पहले, और क्यों नहीं जा सकती, चलो मैं हूं ना, मैं लेकर चलता हूं तुम्हें, हॉस्पिटल ही तो जाना है, जाकर देखते हैं। लेकिन काव्या, वो वापस आएगी तो तुम्हारे बारे में पूछेगी ना, उसका भी वापस आने का टाइम हो रहा है। करण खड़ा हुआ, लेकिन फिर काव्या के बारे में याद आते ही उसे थोड़ी काव्या की भी टेंशन हुई। शिविका ने कहा, मैं फ़ोन कर दूंगी काव्या के ड्राइवर और ज्योति को, अगर वो ज़्यादा ज़िद करेगी तो फिर उन्हें भी हॉस्पिटल बुला लेंगे, लेकिन अभी ऋषभ से मिलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चलो हम चलते हैं। क्रमशः